दोस्तों मैंने जब यह देखा है कि गिरजा हमारे समझाने से नहीं मान रही है, बार बार अपनी बेटी से यह कहा है कि तुम बन के लिए न जाओ, लेकिन मैना की कोई बात जब समझ में नहीं आई, उसी समय मैना ने अपनी बांदी से इशारा किया, दासी सुन ले मेरी बहनी, मान ले कहने संभालो जाइए, और मेरे साजन को टेर के महल मेरी गुइया लइए। कहने लगी दासी से करी अरदास, बहन तू पास भूप के जाइए, भूप के जाइए, तुम्हारी रानी रही है बुलाई, तू इतनी कहिए और इतनी कहिए, बांदी से जब इशारा किया कि हमारे महाराज को बुला करके घर में ले आ, उसी समय दोस्तों अरे धीरे धीरे बांदी चल भैरी दद पवन चलन पे पापरे दद चप चलन पे। महाराज से कहा कि आपकी रानी घर में बुलवा रही है, इसलिए तुम हमारे साथ शीघ्र चलो। तो ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों महाराज हेमांचल जब आंगन में गए हैं तो रानी ने बड़े सुंदर से आसन पर बिठाला और पूछने लगी, श्रीमन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया, गिरजा को मैंने बहुत समझाया और गिरजा समझाने से नहीं मान रही है और वन में जाने की जिद धाने है, तो जवाब दिया कि इसे ना रोको, वन में जाने दो। कैसे जाने दो? क्यों?
अरे बिटिया बिन नाय रे रहूंगी, सजना
कहने लगी, श्रीमन गिरजा के अलावा मेरा इस घर में कोई नहीं है, भला गिरजा के भला इस आंगन में कैसे जीना होगा, और गिरजा को अगर कोई जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो हेमंतचल ने कहा, देखो मैना किसी की किस्मत पर किसी का कोई जोर नहीं होता, इस बात को तो बाबा नारद ने पहले ही कहा था कि गिरजा सियानी हो जाएगी तो वन में जाएगी, इसलिए तुम मेरी एक बात समझने की कोशिश करो। हेमंतचल ने समझाया मैना।
हेमांचल ने कही, कड़ो कर ले ओ अपनो हीयो, पहले उस सबुर में गांठ जन्म नहीं बिटिया ने लियो, लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, रे लिखो जो ब्रह्मा ने लिखो, सोई हुई के मिटे नहीं कोई तबैया देखो। बाबा नारद इस बात को पहले ही कह गए थे, इसलिए तुम इसे वन में जाने से न रोको और इसे जाने दो। समझाने के बाद में दोस्तों गिरजा को कलेजे से लगाया और समझाया, बेटी गिरजा अगर तुम्हारा जंगल में जाने का विचार है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे और तुम वन में जाओ। गिरजा जो थी वो सबसे आज्ञा मांगने के बाद वन के लिए जब गई है और वन में पहुंच करके गिरजा ने भोले बाबा के नाम की है अटल समाधि लगाई, जंगल में जाकर के बेटी गिरजा ने सब देवताओं को छोड़ करके भगवान भूतनाथ के नाम की तपस्या करना शुरू कर दी। भोले शंकर के नाम की है अटल समाधि लगाई, बैठे बैठे बन के बीच में परसे तई मिटाई। भगवान भोले बाबा के नाम की तपस्या जब करने लगी है गिरजा उस जंगल में बैठ करके, तो 12 साल यूं ही बैठी नहीं और बरसे सी जब गुजरने लगी है इन्हें तपस्या करते करते, तो एक दिन सप्तऋषियों का आना हुआ। सप्तऋषियों ने देखा कि जरा सी लड़की और तपस्या रूपी अग्नि में अपने शरीर को जला रही है। गिरजा के नजदीक आए, एक प्रश्न पूछा, गिरजा तुम हेमांचल की कन्या हो? हाँ। बुरा न लगे तो एक बात कहें, बोलो। सप्तऋषि पूछने लगे कि गिरजा,
बोले गिरजा तप ज्वाला में क्यों कोमल अंग जलाती हो, किस फल को इतनी व्याकुल हो, किस कारण किसे मनाती हो।
सप्तऋषि कहने लगे गिरजा, अंग जला दिया
ऋषियों ने पूछा है, बेटी गिरजा इस तपस्या रूपी अग्नि में अपने कोमल शरीर को क्यों जला रही हो और किनके नाम की तपस्या कर रही हो? गिरजा,
अरे दीजो तुम भेद बताई, नाह कर रही हो जो शरीर जलाई।
इस वक्त कहा है कि बेटी गिरजा तुम किनके नाम की तपस्या कर रही हो और किसे मना रही हो, किस फल की इच्छा में हो? तो गिरजा कहने लगी, बाबा जी कोई ऐसो अनुरागी है जाने हमें अनुरागिन बनाए दो, कोई ऐसो बैरागी है जिसके विरह में मैं बैरागिन सी बन गई। कहने लगे, समझ में नहीं आया, खुली खुली बात कहो, किनके नाम की तपस्या करती हो? तो गिरजा कहने लगी, बाबा जी
अथवा भोले बाबा के मैं भोले स्वभाव में भुलानी, अथवा उन भोले बाबा के मैं भोले स्वभाव में भुलानी। और सच तो ये है, स्पष्ट और सच तो ये है, न तो नहीं के हाथ बिकानी।
कहा कही जवाब दो गिरजा ने, हाँ बाबा दिया है बेटी गिरजा ने, बाबा जी मैं भगवान शंकर के नाम की तपस्या कर रही हूं और मैंने यह संकल्प किया है कि भोले बाबा के अलावा और किसी के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। और जो ये वचन सुने तो मुस्करा करके सप्तऋषि कहने लगे, बेटी गिरजा कहीं ऐसा तो नहीं है जो भोले बाबा ने कोई भूत बैठा दिया हो तुम्हारे मस्तिष्क पर? क्यों? कहने लगे, गिरजा तुम पागल हो गई हो क्या? बाकी घर द्वार नहीं, परिवार नहीं और गांव में मड़ैया तो भी नहीं। कुछ नहीं उनके पास, घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, गांव में मड़ैया तो भी नहीं, जा देना समाधि लगाए बैठे। जवाब दिया सप्तऋषियों ने, बेटी गिरजा भोले बाबा के पास कुछ नहीं है, न रहने के लिए मकान है, खाने के लिए भी कोई वस्तु नहीं है। दूसरी बात यह है, ये तो तुमने सुनाई होगा, कुछ दिनों सती से प्यार रहा, फिर रूठे तब ऐसे रूठे बेच तक सक के मर गई अपना बैठे ढूंढे के ढूंढे। समझा करके कहा है सप्तऋषियों ने बेटी गिरजा, भोले बाबा के पास में कुछ है ही नहीं, भगवान शंकर समाधि अगर लगा गए तो हजारों साल तक यूं ही बैठे रहेंगे, तुमसे कोई बात भी करने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि भोले बाबा इतने जरासी बात पर इतने नाराज हो जाते हैं, जो सती जी से एक जरासी गलती बनी, सारी जिंदगी उन्हें रुलाया। यहां तक हुआ कि सती जी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन भोले बाबा ने उनकी तरफ गौर नहीं की। इसलिए कहना हमारा यह है कि तुम भोले बाबा को छोड़ करके किसी और के नाम की माला जपो। तो गिरजा कहने लगी बाबा जी कि जब मन शंकर पर मस्त हुआ, फिर और किसी पर क्यों डोले। जब मन शंकर पर मस्त हुआ, फिर और किसी पर क्यों डोले। यही एक जोड़ अनूठा है, मैं भी भोली वो भी भोले। कहने लगी कि जब हमारा दिल शंकर पर मस्त है तो भला हम दूसरे के नजदीक क्यों जाएं। और विचार हमारा यह है कि भोले बाबा के अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, शादी किसी के साथ नहीं करेंगे। तो बाबा जी बोले, देखो पागल मत बनो ललिया बहू, हम समझ आ रहे अबे कछु ना है बहू। कारे कारे नाग सारे शरीर से लपेटे रहते हैं, बिच्छू बर ततैया उनकी तो कछु गिनती है ही ना, सारे शरीर पे भस्म लपेटे रहते। और हमें जो मालूम पत्ते कि तुम्हारी उम्र और उनकी उम्र में अगर देखी जाए तो जगत के गंभीर देख बे से बंदा 20 दिन ना चलेंगे, लली जिंदगी बर्बाद होते है। तासे तुम अगर हमारी बात मानो तो महात्मा बोले, गिर जा बिटिया में आज रे तोई भली बात समझावे। जवाब दिया सप्तऋषियों ने बेटी गिरजा, कहा भगवान भोले बाबा और कहा तुम है? महात्माओं ने जिस वक्त ये समझा करके कहा बेटी गिरजा तुम कहना अगर मानो तो भोले बाबा को छोड़ करके किसी दूसरे के नाम की तपस्या करो तो ज्यादा सुंदर है। तो गिरजा ने फिर भी वही बात कही, बाबा जी पागल ना बनो। क्यों? कहने लगी गिरजा कि कोटी जन्म यही नगर हमारी पर हूं संभो ना रहे हाँ क्वारी। कोट जना शादी हो जाए, भोले बाबा के अलावा हम किसी के साथ शादी नहीं करेंगे। दोस्तों ये विचार जब सुना है गिरजा के मुखार बिंद से, तो समझ गए हैं सप्तऋषि कि मेरी बात पर इसने गौर नहीं की और हमारी बात का कोई असर नहीं हुआ, इससे अच्छा तो यहाँ से हमें चलना चाहिए। उसी समय जितने भी महात्मा थे वो आगे के लिए बढ़ जाते हैं और गिरजा उसी तपस्या में लीन बनी रही। बरसे इसी तरीका से गुजरने लगी हैं।
कछु समय और गोपीत बढ़ी अति प्रीति भोला से भारी, कर भजन रही है दिन और रात के गिरजा सी कुमारी।
गिरजा के नाम मुखारबिंद से केवल भगवान भोले बाबा का ही निकल रहा है और इधर भगवान शंकर भी समाधि लगाए। गिरजा इधर भगवान भोले बाबा की तपस्या में लीन है और इधर भगवान भूतनाथ भी समाधि लगाए हैं कैलाश पर्वत पर। उन दिनों राक्षसों की संख्या ज्यादा बढ़ गई, देवताओं की संख्या कम रह गई, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई देवता किसी राक्षस के हाथ से न पीटा जाता हो। तारक नाम का राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली था और जब देवताओं को बहुत तंग करने लगा, दुखी करने लगा, तो सब देवता लोग मिलकर के गए विष्णु भगवान के पास। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना दोस्तों, राक्षस और देवता ये कोई गैर नहीं थे। लिखा तो यहां तक है कि दैत्यों में और दानवों में भाई भाई का रिश्ता था, ईर्ष्या और स्वार्थ में पड़ भाई को भाई खाता था। राक्षसों में और देवताओं में भाई और भाई का रिश्ता था, लेकिन एक दूसरे की जलन में, एक दूसरे की ईर्ष्या में, अपने अपने मतलब में भाई को भाई खाए जा रहा था। और ये तो कहावत पुरानी है कि जब सगे संबंधी ही अपने नहीं होते तो भला दूसरा अपना कैसा हो सकता है। दोस्तों इसी के ऊपर दो लाइनें लिखें। बुद्धि में एक दिन एक बात गूंज गई
कि मेरे भ्रात इसमें धोखा नहीं है, मेरे यार इसमें धोखा नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है।
अपना खून अपना कैसे नहीं होता, एक प्रमाण नहीं हजारों प्रमाण है। परशुराम के बाप जमदग्नि ने जब ये कहा कि बेटा परशुराम तुम अपनी सगी मां और अपने सगे भाइयों का कत्ल कर दो, पिता के आज्ञाकारी ने न मां की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा और न भाइयों की तरफ देखता हुआ आगे बढ़ा, तलवार की तरफ बढ़ा।
तेरी आज्ञा जब ही ऋषि जमदग्नि ने हस माता मरी मुक्त गई हालत हो हस मैया।
भैयन को जिसने था मारा, इतने गम पर भी रोता नहीं है, ना कोई अपना होता नहीं है। छोड़ो ये बात, आ जाओ राम और रावण के पास। राम जब रावण के सर काट देते हैं और रावण के सर दोबारा निकल आते हैं तो कौशल्या नंदन चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे रावण कैसे मरे। तो याद रखना भाई विभीषण, जो रावण का सगा मां जाया भाई था, भेद बतलाने को भक्त आगे बढ़ो, मां जाया सगा भाई रावण का था हो मां जाया। सगे भैया को मरवाने में भाई, अरे दिल में दहलाता नहीं है, अपना खून अपना होता नहीं है। छोड़ो ये भी बात, ये तो दूसरे के शरीर का खून रहा। दोस्तों तुम अपने शरीर के खून की तरफ निहारो, जिस खून को बढ़ाने के लिए पौष्टिक आहार खाते हैं, लेकिन ये खून भी वफादार नहीं है दगाबाज। शिकारी ने एक शेर के गोली मारी, शेर जमीन पर गिरा, होश में आया, पुनः उठ के भाग खड़ा हुआ। शेर जान बचा करके भागने लगा, लेकिन शरीर से जो खून गिरता हुआ जा रहा है वही दगाबाजी कर रहा है। शेर जान बचा करके भगता गया, तूने उसको भी रास्ता बताता गया हो, तूने उसको भी रास्ता बताता गया। भागा पीछे शिकारी हाय खून देख के, भागा पीछे शिकारी जब खून देख के, और वो शेर अपने खून से ही बचता नहीं है, अपना खून अपना होता 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 नहीं।
दोस्त याद रखना, इस तरीका से राक्षस और देवता गैर नहीं थे, ये एक ही थे, लेकिन इन दोनों में ईर्ष्या की दीवार खड़ी थी। राक्षसों की संख्या ज्यादा हो गई, देवताओं की संख्या कम रह गई। सब देवता लोग भाग करके विष्णु भगवान के शरण में गए और कहने लगे श्रीमन मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु भगवान समझा करके कहने लगे ये तुम्हारी भूल है। हमारी? वो कैसे? विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हारे अंदर संगठन नहीं है, जब बंधु तुम्हारा पिटता है तो मैं अपने प्राण बचाते, जब बंधु तुम्हारा पिटता है तो मैं अपने प्राण बचाते, वो तुमसे मदद मांगता है तुम पीठ दिखाए भगियाते। इधर दोस्तों, भगवान विष्णु ने जिस वक्त ये कहा है देवताओं से, तारक नाम के राक्षस को भगवान भूतनाथ के पुत्र के अलावा और कोई मारने वाला नहीं है, तो देवता कहने लगे ये तो बहुत वैसी बात आपने कही कि शंकर का पुत्र भोले बाबा तो समाधि लगाए, उनका विवाह भी नहीं हुआ, और ये भी नहीं कह सकते कितने हजार साल बाद उनकी समाधि खुले, तब उनका विवाह कराया जाए, तब लड़का पैदा हो, तब वो राक्षस मरे। इसलिए प्रभु एक काम करो, कोई और विचार सोचो, तब तक तो एक भी देवता साबित नहीं बचेगा। तो विष्णु भगवान बोले, और तो कोई उपाय नहीं है, केवल यही उपाय है, इसलिए जाओ और भोले बाबा की समाधि खुलवाओ, उनका विवाह करवाओ। समस्या इस बात की खड़ी हो गई कि भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए कौन जाए। सब देवता लोग चले हैं और देवता आकर के कामदेव के नजदीक पहुंचे हैं। और दोस्तों, कामदेव के पास जब पहुंचे तो करजोरी के वचन सुनाए हैं, हम स्वार्थ से आया है। कामदेव से विनती की, जवाब दिया है श्रीमन, आज हम तुम्हारे नजदीक अपने स्वार्थ से, अपने मतलब से आए। कौन सा स्वार्थ तुम्हारा है? कहने लगे तुम भोले बाबा की समाधि खुलवा दो। तो कामदेव जवाब देने लगा, प्रभु घर से हम फालतू तो नहीं है जो भोले बाबा से बैर मोल लें और शंकर भगवान से लड़ाई मोल लेना, कोई तितली के पंख तोड़ना तो नहीं है। कामदेव ने बहुत मना किया है, लेकिन देवताओं ने ज्यादा जब विनती की है तो कामदेव कहने लगा, अब चाहे हम मारे जाएं लेकिन जाएंगे जरूर। उस जगह पर कामदेव पहुंचा है दोस्तों, जिस बीहड़ में भगवान भोले बाबा हजारों साल से समाधि लगाए हुए थे। कामदेव की पत्नी रति उसी के साथ है। उस बीहड़ में कामदेव जब पहुंचा है तो काम ने बहा जाते ही जाते सारी माया फैलाई डाली, बीहड़ में उपबन खिला दिया और ग्रीष्म बसंत बनाई डाली। ऋतु को बसंत ऋतु बनाया, ऐसा ही नहीं, बाजे गंधर्व बजाने लगे, बाजे गंधर्व बजाने लगे, परियां जी भर भर गाने लगी। मीठी तानों झनकारन से पृथ्वी आकाश हिलाने लगी। साथियों, कामदेव ने जहां पर माया रचाई है, भीहड़ में उपबन खिला के खड़ा कर दिया, गंधर्व बाजे बजाने लगे, परियां जी भर के गाने और नाचने लगी। यहां तक कामदेव जागा कि सिमट तालाब बढ़े उधर तालाबी देख, सिंधु की ओर उधर सरिता समाती है, और योगी वृंद योग छोड़ भोग के अभिलाषी भय, और भोगिनी की याद उन्हें आज तरसाती है। कि कलियों से फूल मिले और कलियों से झूल मिले, झुक झुक के पेड़न से बेल लपटाती है। नारियों को सारो जग नरसों दिखान लगो, और नरन को हर एक चीज नारी सी दिखाती है। यहां तक कामदेव जाएगा, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पहुंचा। दोस्तों याद रखना, कामदेव ने सोचा कि अब तो हमारी हार है, अपनी पत्नी रति को इशारा किया कि इधर आओ, कहा कि तुम धनुष बन जाओ। रति को धनुष बनाया और कुसुम बाण निकाला, एक वृक्ष की डाल पर बैठ गया दोस्तों,
धन बा पर रखो कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के, तो छुट गयो ध्यान बाण के साथ खुल गए खुला तीसरा नैन भी उन नैनन के साथ, ए खुला तीसरा नैन भी उन नैनन के साथ, जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म भयो न विनाश।
जो भगवान शंकर की समाधि टूटी, भोले बाबा के उन दोनों नेत्रों के साथ में एक तीसरा नेत्र और खुला, जिसमें से ऐसी ज्वाला निकली, उस ज्वाला के पड़ते ही पड़ते कामदेव जो था वो जल करके राख हो गया। दोस्तों, रतिमंडल हाहाकार पुकार उठा। कामदेव की पत्नी रति भाग करके भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, प्रभु ये तुमने क्या किया, दुनिया में किस तरह से मैं जीवित रहूंगी।
कहे रोई के रति पति बिन होई जीवन की खुआरी रे, अब कर दयो नाथ जन का है दिल में विचारी रे, कौन सुने गोया गल में किन को है फिर सुनाऊंगी, को रही है वो मेरे आंगन में मैं किन को पति बनाऊंगी।
करके जिस समय रति रोने लगी, बुरी तरह से कहने लगी है, भोले बाबा से श्रीमन में कहां जाऊं, भगवान शंकर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, रति तुम्हारा पति अमर रहेगा लेकिन बिना शरीर की, दिखाई नहीं देगा, और द्वापर में तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी। रति को जब विदा कर दिया तो चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया, और देवता इधर उधर जब कैलाश पर्वत पर बैठ गए तो विष्णु भगवान बोले, भोले बाबा जादिन से सती जी खत्म भाई, बादिन से तुमने शादी करबे को नाव नाई लो, क्या शादी करने का बेचैन नहीं है। कहने लगे, हम तो बिना शादी के ऐसे ही ठीक हैं, क्योंकि विवाह करने के बाद दुनिया की झंझटें बोल लेना ये सब बेमतलब के काम है, इसलिए हमें शादी नहीं करनी। कहने लगे, देखो शादी तो इंसान को करनी पड़ती है, इसलिए शादी जरूर करो। भोले बाबा ने कहा, आप चाहे कितने भी हमें समझाने की चेष्टा करो, सती जी से विवाह किया वो भी हमें छोड़ करके चली गई, तो अब विचार हमारा यही है कि हम शादी नहीं करें, और शादी करने के बाद में मैं तपस्या करना भी भूल जाता हूं। और दोस्तों ये सच है, इंसान और भगवान के बीच में स्त्री रूपी एक दीवार है, ऐसा विद्वानों का मत है। लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा, एक कवि ने यहां तक लिखा, परी है पिछारी घर बारी या जो कहते मेरी घुसे हो घर में, तुम बाजार चौने जाओ जी, हद लाओ मिर्च लाओ और तुम धनिया लाओ, कूटबे के काजे धनकोटा मंगाओ जी, ताजा तुम रडुआ भले रोटन से लडुआ भले, रूखी खाओ चाहे सूखी सरकाओ जी, खांसी ना खुरला ना डॉक्टर हकीमन से जेब को बचाओ जी, नाचो जी गाओ जी आए तो जाओ जी, जाड़न में चाहे तीन महीना ना नहाओ जी, कुआरे रहोगे तो सुखारे रहोगे, लला जाने बुझ नाक में नकेल ना डराओ जी। भोले बाबा बोले, देखो तासे हमें ऐसे ही बढ़िया है। विष्णु भगवान कान लगे, सो तो शादी तो जरूर करवे पड़े तुम्हें, तो शंकर जी ने कही कि जब बताओ हमारे संग पहले ब्याह कर को लिया। सप्तऋषियन ने जवाब दो, हेमांचल की बेटी गिरजा तो हजारों साल से तुम्हारी तपस्या कर रही है, जाओ दोबारा पूछो, ऐसा तो ना कहो दूसरे के नाम की तपस्या कर रही, झूठ बोली गई हो। तो सप्तऋषि दोबारा फिर गए और गिरजा के पास जाके बोले, लली हमने तुमसे बाई दिन कही थी, समझ बात मान लेती तो अच्छी रहती, क्यों
गिरजा हम पहले ही कहते थे हक में मात नचाती हो अब काम देव तो भसम पयो तो मंदिर पे ब्याह हो जाती हो भोले बाबा को मत अपना इतो सौ ना काम देबू मा डारो बकावे तो गिरजा बोली बाद में चले गए आज भरे आएंगे। गिरजा बोली क्या आज तलक तुम्हें धाकी नींद टूटी है जीवन हो गया तपस्या में पर माया जीवन छूटी है हाँ। गिरजा बोली चाहे कामदेव भस्म हो जाए चाहे दुनिया अपनी जगह से हटके कहीं चली जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, केवल भोले बाबा से मतलब है, उनके अलावा हमें किसी के साथ शादी करनी ही नहीं है। बोले ठीक है। तो सप्तऋषि जो हथे वो गिरजा के नजदीक जाए के विनती करने लगे और कहने लगे माफ करना गिरजा, हमें तो भोले बाबा ने तुम्हारे पास भेजो है तो चलो अब तुम्हारा विवाह होगा। चले गिरजा को बुला करके हेमांचल के घर भेजने के लिए। तो सप्तऋषि ले गिरजा को बांसे धाए हेमांचल के महल बीच में आए शादी की भोला दूल्हा बन के रह आई अब तो हरनाथ सिंह वर्मा जी समय शादी को आएगा अब तो हरनाथ सिंह वर्मा जी वक्त शादी को आएगा को सारी कहानी कही और बताया कि तुम अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार हो जाओ, भगवान शंकर बारात लेके आ रहे हैं। और नारद जी से ये कहा कि तुम जाओ और बारात को बुला के ले आओ। और नारद जी चले कैलाश पर्वत पर और सप्तऋषि जो है वे सब हेमांचल के द्वार पर बने रहे। नारद जी ने जाकर के भोले बाबा से कही कि महाराज बारात सजाओ, बारात लेकर के शादी करने के लिए चलो। भोले बाबा सोचने लगे बरात सजाए, बरात कैलाश पर्वत को यह होना है, बरात में किने लेके जाए, बरात में तो कुल्ले जने वो चाहिए तब बरात मालूम पड़ते। सोचने लगे चलो बरात जितने भूत प्रेत हैं सबन से हैं, हम कहे हो सब अपनी बरात में लेके जाए। भूत प्रेत है थे उनसे जाके कही कि भैया तुम लोग हमारी बरात में चलो, जो बरात को ना सुनो भूतरन ने मारी खुशी कमाए, नचन लगे उलन लगे कैलाश पर्वत सज सज के तैयार होने लगे। कैसे बरायती सजे जो बरायत में जाए भाई लोग हथे सजे कैसे, कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना कहो के मूड है ही ना, और धड़ई धड़ बरायत करे बे को जाए रहो, कहो के धड़ है ना सर ही सर जाए रहो, कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना कछु पीसी और रुंड मुंड धारी कछु हाथ बिना कछु पैर बिना कछु पीसी हाथ पैर धारी कैसी हसी बनाए तो भोले बाबा जी कहो के हाथ अगर हैं गोड़े
बाहें ताकि आता ही ना है और कहो कि आंखें बिल्कुल ले ही ना है और आंखें हैं तो पूछते हैं पे आंखें ही आंखें का दस
दस बीस कान आंखें नहीं न कर आंखें हैं तो कान नहीं आगे की इनको खबर नहीं आगे की इनको खबर नहीं पीछे का कोई ज्ञान नहीं
अब तो दोस्तों बारात जब सजी भगवान भूतनाथ की तो जितने भूत प्रेत थे सब सज सज के तैयार भाई अब भोले बाबा जो हते वो दूल्हा बनवे के लिए बैठ गए तो देवियां जब दूल्हा बनाए के चली तो दूल्हा जब बनाओ गए भगवान शंकर तो सोचने लगी सब कि सबसे पहले दूल्हा पे तो हल्दी चढ़ाई जाती है हल्दी कहां से आए तो भगवान शंकर बोले नहीं रुक जाओ
तो हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाई भोला ने अंधे पहरे और भूतन की बारात सजाई लई भोला ने
चढ़ाए के बदले में भूतनाथ ने सारे शरीर से भस्म लपेटी सोचने लगे हल्दी को काम तो चलेगा दूल्हा जब जाते हो तो मोहर और बांध तो इन कोई बाजार बाजार ना मोहर कहां से लाओ जाए बड़े भनवाए सांप को पकड़ो जटन से लपेट के बाबू भन सीधो करवा दो मोहर को काम निकालने लगो जे तो काम होगा कंगन की कमी हो रहेगी सो पतली सी नागिन पकड़ी सु कलाई में लपेट के करिया बाबू बीच लाओ तू ऊपर से डाल लो कंगन को काम निकाल लो
कि नागिनिया वे सुघर कंगनिया है छलों की छटा न्यारी है वह प्रेत पिचास बराती है भोला जुड़े बैल की सवारी है
अब तो नागिनिया वो कंगनिया है दोस्तों बारात जब चली है तो हेमांचल के द्वार के लिए अब नांदिया पर सवार हुए कि भगवान भूतनाथ आगे बढ़े हैं और सब पीछे से भूत प्रेत जा रहे हैं बुरी तरह से उछलते कूदते हुए नाचते हुए तो विष्णु भगवान बोले देखो भोले बाबा तुमसे व्यवहार चला जाए आज टूट जाए ऐसी बारात में थुकैबे के ना जाए क्यों जब भूत यहाँ पर इतना उदम मचा तो रिश्तेदारी में कमान जाए सूत्र नचेंगे हम आ जाए तो भोले बाबा सोचने लगे जो तो गलत बात है तो जब पीछे घूम के देखो तो भूत सब शांत हो गए फिर आगे को जब नांदिया पे मोह करो सो भूत फिर हो करके नाचने लगे सोचने लगे काम ऐसा ना चले सो नांदिया पे पीछे को मोह करके बैठी वैसे दूल्हा बड़े अच्छे थे अब और नीक लगन लगे बरात जाए कि जब गांव के किनारे पे गांव के नजदीक जब पहुंची है और जो तो जानते ही हो कि जब बरात कहूं से आते तो सबसे पहले बरात देखने के लिए को जाता है लली लला गांव के तो सब बजता है कि चलो बरात देखे लेकिन
पर शिव जमात की करामात कर गई है जब गजबानों को पर शिव जमात की करामात कर गई गजब यजमानों को बच्चा बेचारे उसी समय ले भागे अपने प्राण
जो बरात देखी चुपचाप लौट के भागे अपने अपने गन्ने में छुप गए और अपनी मैया से जाके कहने लगे मैया ने ऐसी बरात कबू देगी नया सो दूल्हा दूल्हा कहाँ है मौत को चूल्हा है
बच्चा एक अंत में छिप गए हैं बाहन बन में बिड़लाने दे दिल को थाने कर पड़े रहे जो बूढ़े और सियाने थे
बरात देख के भोले बाबा की सब लोग ने अपने अपने घन के किबार बंद कर लाए और चुपचाप आंगन में छुप के बैठ गए अब द्वारे से बाहर तो बे ही पड़े रह गए जिनसे उठ के चलो ही ना जाता तू दोस्त बरायत जाए के जन्माष्टमी में पहुंची गई। जन्माष्टमी में जब पहुंची आदर सत्कार सम्मान बहुत भाव दूरी दूरी बहुत ढंगा कोई ना जाए नाश्ता हुआ का रात हुआ तो एक खेत की दूरी पे हुई देता बाटे खाई ली हम तो जाए रही जय दशा बनी रही। संजय जब भाई तो नारद जी ने कही भोले बाबा से के एक काम करो प्रभु हमने कहा अच्छे बन जाओ क्योंकि बराए तो मैं जब कोई काउ को अगर देख लंग आते तो दूल्हा के ऊपर सबकी नजर होते कैसे तुम्हें देख के कोई ठलाए ना कान लगे हम तो खुद ही चाहते हैं कि बराए तो वापस कर दे हमें शादी ना करे में दरवाजे पर जब चले हैं नादिया पे बैठे के तो नारद जी सोचने लगे चाहे कछु होए याद अगर रही जिंदगी में तो ऐसी मजे पता ही मुख करें ही ना। और वंगेला जब बढ़े दरवाजे पे पहुंचे तो गिरजा की सब सखियां भाजी और गिरजा से बोली सखी हम तुम्हारे पति को देखवे जा रहे हैं तो गिरजा बोली हाँ जाओ जरूर जाओ सखी
मुश्किल से मिली मुश्किल से मिली
इतनी लड़कियां हती वे भोले बाबा को दरवाजे पे देखबे को आई हैं और दूर से जब देखो तो एक लड़की बोली सखी जी का भो क्यों हेमांचल ने जो ना देखी कहां भगवान शंकर हैं और कहां गिरजा सारे शरीर पर भस्म लपेटे हैं और देखबे में कितने दूसरी बोली हमें जो लगा जे छह महीना ना जी गिरजा की उम्र देखो प्रेरणा की उम्र देखो तीसरी बोली और सब बात ठीक है जो सारे शरीर से सांप लपेटे घूम रहे अगर गिरजा ने कहू हाथों पाए दाबे की कोशिश करी और जो कहू सांप के ऊपर ने कहू हाथ पड़ेगा तो एक ही फुसकार में सब हड्डियों को ढांचरा इकट्ठे हो जाए। एक बोली तो इन बातों से का मतलब आरती उतारे वे आए आरती उतारो लौट के चलो का लेने देने। एक बोली आरती उतारना हम तो जाए ना हमें सपन से बहुत डर लगा तुम मैं ना जी दूसरी का जो हटी राय से बोली सांप से डर लगा तुझे तो समझदार हो तुझे रिश्तेदार ने सुबोनता ही ना है जब आप रिश्तेदार ने सुना तो तू ही चली जा सुबह कछु हटी नहीं रहे आगे बढ़ी और आगे बढ़ के थरिया लेके जब आरती उतार बे चली दो तीन नौ थरिया घुमाए पाई और एक नांग संग ही संग फन घुमा तुरो जो चौथे दावा ने थरिया घुमाए बे की सोची नांग ने फुसकार दई सो कहू बिटरिया डरी और कहू धरिया डरी। अब भाग के आई मैना से बोली मैया और सब बात छोड़ो जैसे कछु हते वे सब जो कछु है सब ठीक है लेकिन एक बहुत बड़ी बात
तेरी गिर जाए नादान रे मुंह पर ना बिल्कुल कूड़ो
कहा कि भोले बाबा मालूम पड़ता है ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे फिर भला गिरजा की जिंदगी कैसे गुजरेगी। जो ये वचन सुने तो मैना ने रो करके कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए हमें विवाह नहीं करना है। उसी समय दोस्तों हेमांचल ने आके जवाब दिया, रिश्तेदार दरवाजे पर खड़े हैं, घर में क्या हो रहा है। कहने लगी महाराज मैं जान बूझ के गिरजा को जीवन भर ना रुलाऊंगी और बिटिया को गले से बांध करके हाय कुआ में जाए गिर जाऊंगी। तब तक नारद जी आए, क्या हुआ मैना? मैना कहने लगी कुछ नहीं हुआ नारद, निकल जाओ घर से, हमें शादी नहीं करनी। तो ये किसने कहा कि तुम शादी करो? ये तुम्हारा सौभाग्य है मैना, जो भोले बाबा तुम्हारे द्वार पर खड़े। और नारद बोले दुनिया में कोई पुरुष नहीं जो शिव की क्षमता पा जाए, सुअर कोई तनो भाग्य कहां जो खीर हवन की खा जाए। तो बुरा बुरा चिल्ला करके नाक में कलंक लगाती हो, कुछ गिरजा से भी पूजा है, कुछ गिरजा से भी पूछा है या खुदाई न्याय चुका दी हो। बाबा नारद कहने लगे मैना तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, अगर गिरजा केवल एक बात ये कह दे कि हमें शादी नहीं करनी है, हम बारात को वापस ले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे कहने से नहीं। मैना कि दिल क्या है और दिलासा क्या, ये उनसे ही मिलके पूछो। दिल क्या है और दिलासा क्या, ये उनसे ही मिलके पूछो। शिव शंकर में जौहर क्या है ये गिरजा के दिल से पूछो। नारद जी ने जब ये कहा कि गिरजा मना कर दे तो चले जाएंगे, गिरजा से मैना ने पूछा बेटी तुम्हारा क्या विचार है? गिरजा कहने लगी मैया बारात घर से वापस हो गई तो बहुत बड़ी बेइज्जती है, जैसे कुछ है वैसे सब ठीक है, तुम हमारा विवाह इन्हीं के साथ कर दो। तो दोस्तों बड़े हंसी खुशी के साथ में गिरजा के पीले हाथ रे हेमान जलने किए, बड़े धन धन धाम रे के धन में हाय दिए। महाराज के सबके दिल भारी उत्साह, राजपूत के चित में तीनों शंकर जी को ब्याह। वाले श्याम नजरिया तेरी न्यारी है, ओ भोला भंडारी नजरिया तेरी न्यारी है, ओ कैलाश मैया नाथ नजरिया तेरी। नारद जी के कहने के आधार पर और गिरजा का विवाह बड़े हंसी खुशी के साथ में महाराज हेमांचल ने भोले बाबा के साथ किया है, और गिरजा को साथ लेकर के भगवान भूतनाथ कैलाश पर्वत के लिए चले आते हैं। राजपूत कैसिट के माध्यम से हुई रोर वसीला, जल्दी में ही निकल रही माखन चोरी की लीला। अब देश कुमार पुनु वाले ढोलक मधुर बजावे, ग्रंद सिंह अड़ुपुर वाले चिमटाया चटकावे, अखिलेश कुमार कथे दुपुरा को लो ए घड़ा बजाई, ब्रजेश यादव ने कैसे सुंदर दीनी दर्शाई। परसों प्रीतम लेवे आवे